विगत जन्माष्टमी को भगवान के जन्म की कथा हुई थी, कुछ बाकी रह गया था। भगवान के जन्म लीला का उत्तरार्ध कहा नहीं जाए तो उसी को कहें कहेंगे। कंस कारागृह में माता देवकी को और वसुदेव जी को कैद किया था। अब श्री वसुदेव जी कृष्ण को गोद में लेकर के चले तब अपने आप कारागृह के दरवाजे खुल गए। योग माया ने ऐसा प्रभाव किया कि दरवाजे खुल गए, सारे प्रहरी सो गए और मथुरा के सारे लोग भी सो गए। केवल सो ही नहीं गए बल्कि तया हृदय प्रत्यय सर्ववृत्ति से उनकी इंद्रियों की सारी वृत्तियां हर ली गई योग माया के द्वारा। उनको आंख थी पर देख नहीं सकते थे, कान था लेकिन सुन नहीं सकते थे। मथुरा के सभी लोग, द्वारपाल सब स्वर सो गए। तया हृदय प्रत्यय सर्ववृत्ति सु दास्थे और सुसाहित्य सुत। द्वारपाल और पूर्वासी सभी सुला दिए गए। इससे कोई भी व्यक्ति वसुदेव जी को जाते न देख ले। कारागृह से जब ही निकलने की चेष्टा किए, पुत्र को अपने गोद में लेकर के, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ताह कृष्ण वाहे वसुदेव आगत है। कृष्ण को गोद में लेकर के चल रहे थे श्री वसुदेव। दूर से ही दरवाजे अपने आप खुल जाते थे। कैसे खुलते थे? जैसे सूर्य के आगमन होने पर रात्रि का अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। सूर्य अभी पूर्व क्षितिज में रहता है, प्रकट नहीं होता है, तभी अंधकार नष्ट हो जाता है। जब वसुदेव जी अपने पुत्र को अंक में निकल के चल रहे थे तो बहुत दूर से ही दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। जबकि ये दरवाजे संलग्न थे, बहुत अच्छी तरह से बंद किए गए थे, कीली उनमें कीले लगाई गई थी, जंजीर और कील, पर वे अपने आप खुलते गए। सबसे पहले वसुदेव जी की बेड़ी खुल गई। बेड़ी खुल गई, इस पर एक भक्त टीका किए हैं कि जन्म नाम सुत चेत असंख्य जन्मार जितें प्रारब्ध स्नेह स्नेह यद प्रारब्ध बंधन चिति। जिनका केवल नाम सुनने से असंख्य जन्मों में किए गए कर्म प्रारब्ध कर्म क्षीण हो जाते हैं, केवल नाम सुनने से वही पुरुष श्री भगवान जिनके वक्षस्थों के अलंकार छाती से चिपके हैं, और वैसे वसुदेव जी के आने पर ये दरवाजे खुल जाए तो कौन सा आश्चर्य, जबकि प्रारब्ध भी नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध उस कर्म को कहते हैं जो कर्म फलोन्मुख हो चुका है, फल देने वाला है, संचित और क्रियमाण देर से आते हैं, लेकिन प्रारब्ध का अर्थ है जो कर्म और फल देने के लिए तैयार हो गए, फल उसका भोगना ही है, तो उसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध का अर्थ होता है प्रारंभ, जो कर्म फल देना चालू कर रहा है उसको प्रारब्ध कहते हैं। कर्म होते ही रहते हैं प्रत्येक जन्म में, और कर्म का बहुत बड़ा बंधन होता है, तो समय पर फल देते हैं, कर्म का फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि कर्म का फल नहीं मिलता, और जो प्रारब्ध कर्म है उसको तो भोगना ही पड़ता है, परंतु भगवान के नाम में वह शक्ति है, असंख्य जन्मों में किया गया कर्म, प्रारब्ध कर्म, नष्ट हो जाता है। तो फिर वसुदेव जी के पैर की बेड़ी खुल गई, ये कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके वक्षस्थल के अलंकार बने हुए हैं। और ये पहरेदार सो गए, ये भी बहुत आश्चर्य नहीं है, योग माया का ऐसा प्रभाव है कि बड़े बड़े देवता भी माया से मोहित हो जाते हैं, फिर ये कंस के सेवक बेचारे तुच्छ अगर माया से मोहित हुए तो कौन आश्चर्य। उनकी समस्त इंद्रियों की वृत्तियां हम संहार लिए गए, कोई देख नहीं सका, कोई पुकार नहीं सकता, बोलने की शक्ति नहीं थी, सुनने की शक्ति नहीं थी, चलने की शक्ति नहीं थी, किसी भी इंद्रिय में कोई शक्ति नहीं। इस तरह श्री भगवान को अपने हृदय में बसाने पर यह प्रतिक्रिया होती है, श्री उस व्यक्ति भक्त के जीवन की सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं, रास्ता साफ हो जाता है। घोर अंधकार है, लेकिन उस अंधकार में भगवान शेषनाग अपने 1000 फणों को फैलाए हुए, जिनमें अद्भुत मणियां हैं, ये मणियां चमक रही, सारा पथ का अंधकार नष्ट हो रहा है। जो पहरेदार थे वे सो गए, उनकी वृत्तियां इंद्रियों की वृत्तियां हट गई, यहाँ तक कि मथुरा का कोई कुत्ता भी जगा नहीं। वे गए नंद भवन में, गोकुल पहुँचाया है कृष्ण को, और भगवान ने कहा था कि श्री यशोदा से उत्पन्न मेरी माया है, इसको लाइएगा। इसके बाद मेरी शक्ति, मेरी माया अपने आप अपना कार्य करेगी। श्री वसुदेव जी यशोदा के बेड पर जन्मी हुई, जो माया को उठा लिए और अपने पुत्र को रख दिए, और योग माया मथुरा से गोकुल से मथुरा तक बिल्कुल चुपचाप आई, रोई नहीं। यहाँ तक कि नंद भवन में जब योग माया का जन्म हुआ उस समय भी नहीं रोई। और श्री वसुदेव जी आ गए योग माया को लेकर के मथुरा। मथुरा का कारागृह खुला था। इसके बाद वसुदेव जी के प्रवेश करने पर अपने आप पूर्ववत आवृत्ता है, पहले की तरह बंद हो गया। सिटी के और कारागृह के बाहरी दरवाजे और भीतरी दरवाजे सभी बंद हो गए। भीतरी दरवाजा से आशय है माता देवकी का प्रसव गृह भी बंद हो गया। कंस के सेवक गृहपाल या द्वारपाल चेतावनी दिए गए थे कंस द्वारा कि जब ही देवकी का आठवां गर्भ जन्म ले हमको खबर दो, जितना जल्दी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तेत तूर्णम उपव्रज्या देवक्या गर्भ जन्म तत् चक्र भोज राजाय चत उद्विग्न प्रतीक्षित। तो बच्चे के रोने की ध्वनि सुन करके वे गृहपाल उठे, समुद्रिका जगे। बालक ध्वनि का अर्थ है नवजात शिशु के रोने की आवाज। भगवान की शक्ति योग माया कारागृह में पहुंचकर माता देवकी के गोद में आ करके रोना चली। योग माया के रोने का प्रयोजन यह था कि वो चाहती थी कि ये द्वारपाल सभी जगे और कंस को इसकी सूचना दे दे। द्वारपाल जगे, तेत तूर्णम उपव्रज्य देवक्या गर्भ जन्म तत्, तुरंत जगे बेड से। और देवकी के आठवें पुत्र के जन्म की खबर, जन्म का खबर दी कंस को। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तूर्णम उपव्रज्य, तुरंत गए कंस के पास। कंस अंतःपुर में था, स्वयं किए था, लेकिन कंस ने ऑर्डर किया था कि कोई भी कारागृह का रक्षक हमारे पास आ सकता है कभी भी। जब भी बच्चे का जन्म हो तो हमको सूचना दो जितना जल्दी। लेकिन कितना देर हो चुका है कंस को खुद पता नहीं है और कारागृह के रक्षकों को भी पता नहीं। बच्चा जन्म लिया, वो पहुँच गया गोकुल, और गोकुल से यह जो माया आई है वो रो रही है, पर द्वारपालों ने विचार नहीं किया कि यह बच्चा रो रहा है या बच्ची रो रही है। केवल इतना ही ध्यान हुआ कि शिशु रो रहा है। देवकी का आठवां गर्भ उत्पन्न हो गया तब ये तुरंत भोजराज को सूचना दिए। भोजराज कंस जहाँ सोया था वहाँ पहुँच गए, सूचना दे, स्वामी स्वामी देवकी का आठवां पुत्र हो गया है। कंस पूछा कैसे पता चला, तो हम डायरेक्ट आवाज सुन कर आए। कंस सतल्पा तुरंत उठाया, कंस तुरंत अपने सज्जा से उठा और यही उसके मुख से निकला, कालो एवं तिबी वाला, अरे ये मेरा साक्षात काल है। देवकी का आठवां पुत्र मेरा साक्षात काल है। इस तरह व्याकुल हो गया। वो तो पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा था भय से, जब उद्विग्न प्रतीक्षा थे। जब एक दिन कारागृह में गया था कुछ दिन पहले कंस, तो उसने देवकी को देखा ध्यान से। देवकी के 6 पुत्र मारे गए थे फिर भी वो प्रसन्न थी, उसका तेज बढ़ा था क्योंकि उसके गर्भ में भगवान थे। कंस बिना किसी के बताए अपने आप समझ गया कि इसके गर्भ में विष्णु आ गया है, क्योंकि विष्णु आनंदमय है, उसके आने से देवकी प्रसन्न है। देवकी की प्रसन्नता से समझ गया कि इसके गर्भ में विष्णु आ गया, हरि आ गया। आहस में प्राण हरो हरिर गुहा, वह तुरंत समझ गया कि इसके गर्भ में इसके उदर में हरि आ गया है जो मेरे प्राणों का हरण करेगा। तो उसी समय से वो प्रतीक्षा में था ठीक है कब जन्म लेगा, मेरी मृत्यु है तो मैं अपनी मृत्यु को मार दूंगा, विष्णु को मार दूंगा। क्षण प्रतिक्षण जागृत स्वप्न सुप्ति सब समय, खाते समय पीते समय चलते समय वो भय से कांपता था और प्रतीक्षा कर रहा था कब जन्म लेगा। जैसे अन्य बच्चों को मैं मार दिया तो उसको जन्म लेते ही मारूंगा, सुखदेव जी कहते जब उद्विग्न प्रतीक्षा थे, भयभीत होकर के जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था उसके जन्म का संवाद द्वारपालों ने दिया कंस को। जब कारागृह के भीतर वसुदेव जी प्रवेश किए और देवकी की गोद में बच्ची को दे दिए तो वह रोने लगी। मथुरा गोकुल से मथुरा तक नहीं रोई, और नवजात कन्या थी और देवकी की गोद में बहुत रोने लगी। माता देवकी बार बार चुप कराती थी, उसको भय था कि इसके रोदन की आवाज़ को सुनकर कौन सा आएगा, और मारेगा, इसलिए वो बार बार चुप करा रहे थे, छाती से लगा रहे थे। बेड पर सोई थी देवकी, बच्ची को अपनी गोद में वक्षस्थल में रखी थी। कभी कभी देवकी सोचती थी बच्ची अपने माँ का दूध नहीं पी सकी तो अपना दूध पिलाना चाहती थी। बच्ची तो नाटक कर रही थी, वो तो रोना ही जानती थी, रो रही थी। बार बार मुख चुम्बन कर रही थी माता देवकी, बार बार छाती से लगा रही थी, पर कितना भी प्रयास कर रही थी बालिका का रुदन रुका नहीं, रोती ही गई। उसकी ध्वनि को सुन करके तत्व बालक ध्वनि सुखा गृह पाला समुद्रित। माता घबरा रही थी, यद्यपि भगवान ने स्वयं कहा था कि मेरी माया है और यशोदा के गर्भ से जन्म ली है, उसको लेकर के आओ, वसुदेव से कहा था। और माता देवकी घबरा रही थी, क्या होगा, नया नया जन्म हुआ है बच्ची का, कहीं रास्ते में दिक्कत नहीं हुई। वसुदेव से पूछती थी ठीक से लाए ना, कहीं चलने में उबड़ खाबड़ जमीन नहीं पड़ा और इसको कोई धक्का नहीं लगा, मैं क्यों रो रही है। वसुदेव जी पुरुष हैं, धैर्य में थे, पूर्ण विश्वास था भगवान के वाक्य पर। लेकिन माता देवकी बारंबार शोक में थी, अभी बच्ची है, कहीं शरीर में कोई दर्द तो नहीं है, बार बार चुप करा रही थी। और दूध पिलाने का प्रयास कर रही थी लेकिन वो दूध पी नहीं रही थी, वो रो रही थी। जैसे बच्चे रोते हैं जन्म लेने पर, वैसे रो रही थी। द्वारपालों ने विचार नहीं किया कि ये बच्ची है या बच्चा है, वे तो बालक ध्वनि नवजात शिशु के क्रंदन को सुन करके दौड़े कंस के पास। कंस शयन गृह में था, वो सुनते ही घबरा गया, जिसकी प्रतीक्षा करता था जन्म, भयभीत होकर के। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कालो यमिति भी होता, वह सोचा ये साक्षात मेरा काल है, इसलिए मुक्त मूर्धज रसखलन मुक्त मूर्धज, वो स्तुति गृह के तरफ चला। दोनों के लिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, द्वारपाल सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी हम खबर देंगे कंस, कंस भी सोच रहा है कि अति शीघ्र मैं देवकी के आठवें पुत्र का वध कर दूंगा। उसको देखा माता देवकी ने, कंस को विकराल रूप में, वो हाथ में खड़ग लिए था और पूछता था दल वालों से कहाँ है वो, कहाँ है, बारह बार यही मुख से बोलते कहाँ है वो, आठवां पुत्र देवकी का कहाँ है। द्वारपालों ने कह दिया सरकार की आवाज़ आ रही है सूतिगृह, तो गया और यही कहता था कहाँ है मेरा काल, मेरा शत्रु कहाँ है, कहाँ है। कंस अतिशय देहाशक्त था, देह को आत्मा मानता था, देहाभिमानी, तो देवकी ने देखा मेरा भाई चचेरा भाई कंस हाथ में तलवार लेकर के और आया, पूछ रहा है, उसका बाल बिखरा है, रस खलन, वह अपने शज्जा गृह से सूती गृह तक आने में कई बार इतस्ततः प्रस्खलन पतित हुआ, गिरा। इसी ने सुनते उसमें कहते हैं प्रस्खलन, प्रस्खलन बहुत स्खलन हुआ। बरसात का महीना था, भादो, वर्षा हुई थी, कंस कई जगह गिरा रास्ते में, उसके सूती गृह से, देवकी के सूती गृह से उसके शयन गृह की दूरी थी और रास्ते में कई बार गिरा और ठीक से धोती पहन नहीं पाया, उसके पैर फंस रहे थे, इस कारण ही गिरा। मुक्त मूर्ध जा, उसके बाल बिखरे थे, बिल्कुल पिशाच जैसा लग रहा था, लाल लाल आंखें थी, भय से कांप रहा था। कोई व्यक्ति मृत्यु से कितना डरेगा, देहाशक्त व्यक्ति एक कंस के जीवन में देखा गया, केवल अपने मृत्यु से डरता था। यद्यपि आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का आठवां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, ऐसी एक वाक को सुनकर वह दुष्ट कंस उसी को मारने की चेष्टा कर रहा है। देवकी घबरा गई और उसने बच्ची को दिखा कर कहा तमा मातरम देवी कृपणा करुणम सती, वह दुखिनी देवकी बच्ची को दिखा करके कहने लगी भैया ये आठवां गर्भ से मेरा पुत्र नहीं हुआ, पुत्री हुई। तो ये स्त्री है, इससे तुमको कोई भय नहीं है, भय होता यदि पुत्र होता तो ये बेचारी कुछ नहीं करेगी, कृपया छोड़ दो इसको। सबसे पहले देवकी ने कहा कि यह जब थोड़ी बड़ी होगी विवाह के योग्य तो मैं तुम्हारे पुत्र से इसका विवाह करूँगी। अश्नुषा अश्नुषा तुम्हारी पुत्र वधु बनेगी। इसको मत मारो। बारंबार चरण में गिर रही थी देव की। उसने अपने पुत्र के लिए कभी ऐसी प्रार्थना नहीं किया। छह पुत्र जब मारे गए और यह पुत्री है सखी यशोदा की पुत्री, इसलिए इसकी रक्षा अवश्य होनी चाहिए। और ये कहने लगी ननु हम ते यह वर्जा दीना हथ सुता करो। हे प्रभु, हे अद्वैत दान में समर्थ, आप निग्रह अनुग्रह में समर्थ हैं, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मन हंगते हिया मर जा दीना हत सुता को, मैं दीन हूँ, मेरे पुत्र मार दिए गए और प्रत्येक वर्ष एक पुत्र मरते थे, मार देता था कौन से, तो उसको कह रहे देवी की बहु हिंसुता भ्रात, भैया हमारे बहुत से पुत्र मारे गए आपके द्वारा। और तुरंत ही देवकी ने कहा कि तो यह दैव निशिष्ट है। देवकी ने सोचा कि यह अपनी निंदा समझेगा कि बहुत पुत्रों को मार दिया, ये सोच करके ये और चिढ़ जाएगा, ये समझा कि निंदा कर रही है। इसीलिए देवकी ने तुरंत कहा तो यह दैव निशिष्ट है ना, भैया आपका दोष नहीं है, यही दैव की इच्छा थी। दैव ने आपको प्रेरित किया, आप दैव द्वारा प्रेरित होकर के मेरे पुत्रों का वध कर दिए, लेकिन बहुत पुत्रों का वध कर दिए और यह एक पुत्री मैं आपसे भिक्षा मांग रही हूँ, इसको छोड़ दीजिए। एक बार देवकी अपने पुत्र की रक्षा को भूल गई और सखी यशोदा की लड़की के मोह में पड़ गई, स्नेह में पड़ गई। अपना पुत्र नंद भवन में सुरक्षित पहुंच गया, यह आनंद उसका तिरोहित हो गया। कंस की विकराल अवस्था को देख करके वो योग माया की रक्षा चाहते हैं। यह मेरी अंतिम प्रजा है, अंतिम संतान है, अब इसके बाद मुझे संतान नहीं हुई, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए, इसको मत मारिए। इस तरह पुत्री को अपने गोद में ले करके वक्षस्थल से छिपा करके और एक हाथ से कंस को रोक रही थी और एक हाथ से बच्ची को पकड़ी थी। कंस को रोकने के लिए, भैया ये मेरे अंतिम संतान है, बार बार बोल रहे भैया स्नेह उत्पन्न करने के लिए। और प्रभु कहे, प्रभु आप समर्थ हैं, आपसे बच्ची के प्राण रक्षा की भिक्षा मांग रहे हैं, कंस के आचरण को सुनते हैं, उसने कह रहे हैं इतनी प्रार्थना करने पर, बार बार बिगड़ाने पर, और रो रही थी बार बार, दिन दिन वर दिन से भी दिन बनी, वास्तव में देवकी दिन नहीं थी, पुत्र की रक्षा हो गई इसको सोच करके वो आनंद में थी। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं देव, वह मन में बहुत आनंद में थी, दिन नहीं थी लेकिन ऐसे बोल रहे थे कि लगता था कि दिन से भी दिन है, अति दिन अति दुखी। परंतु कंस देवकी के हाथ को झटक करके योग माया दोनों चरणों को पकड़ लिया, चरण पकड़ करके खींच लिया कोद से, इतना कोमल है, इतना कर्कश हृदय और अश्नों का होता है, वो देह की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं करते। वह जन्मी हुई तत्काल की जन्मी हुई बच्ची थी, अभी गर्भ का जल लगा हुआ था, क्लीन था, ऐसी सुकोमल बच्ची को जो अपने बहन की बेटी थी उसको पकड़ लिया, पकड़ करके वहीं पत्थर पर पटक पटका, हाथ में ले करके मोशन बना करके पत्थर पर पटका जिससे तुरंत मर जाए। बच्ची तो घुमाने से भी मर सकती थी हवा में, लेकिन कर्कश हृदय कंस सोचा कि तुरंत मर जाए। तो बार बार कहते थे ये बेटी है इसको छोड़ दीजिए, इससे आपको कोई भय नहीं है, आपकी पुत्र वधू बनेगी। परंतु कंस पर कोई असर नहीं हुआ, तो लेकर के सद्य अजात कन्या को पटक दिया, और पटका नीचे, लेकिन दैव जो से भगवान की माया थी और उसके हाथ से समुद्र पत्ते सद्योद्यम दिव्यम ब्रह्म गदा, देवी जो माया उसके हाथ से उछल करके आकाश में चली गई, पत्थर पर आई नहीं, कंस के हाथ से छूटकर ऊपर उठ गई आकाश में, और आकाश में जाने पर वह देवी अष्टभुजा से युक्त दिखाई पड़ी कंस को। आठ भुजा से जुड़ता और आठों भुजाओं में आयुध लिए थी। माता दुर्गा के रूप में हो गए, अष्टभुजा देवी दुर्गा जी हैं। आठ हाथों में एक एक हाथ में एक एक आयुध लिए थे माता दुर्गा। माता दुर्गा को दुर्गा इसलिए कहते हैं जिसको पार पाना बहुत कठिन है, दुर्गा से दुर्गा दैवी है सब गुणमय मम माया दुरत्त है मामे वे माया नेतम तरंगते है। कंस के हाथ से छूट करके आकाश में उड़ गई और दिव्य वस्त्र पहनी थी, शरीर में दिव्य अंगराग लगाई थी सुगंध, दिव्य आयुध चक्र शंख गदा बाण धनुष सूल, आठों हाथ में आठ आयुध लिए थे। और जब वो आकाश में उड़ी तो वो आकाश में जाते समय अपने पैरों से कंस के मस्तक पर आघात किया और थोड़ा ऊपर जाकर के बहुत उच्च स्वर से बोली, अरे मंद अरे मूर्ख किम मया हतया मंद, अरे मंद बुद्धि मेरा वध करने से तुमको क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, क्या लाभ होगा, जाता खड़ो तो अंत के तुम्हारा अंत करने वाला जाता खल निश्चित तुम्हारा प्राण नाश करने वाला जन्म ले चुका है, जत्र क्वा जहाँ कहीं अर्थात माता दुर्गा ने बात को छिपा कर कहा देवकी का नाम नहीं लिया। जत्र कोवा पूर्व शत्रु, तुम्हारा पूर्व शत्रु पहले जन्म में तुम्हारा वध करने वाला पूर्व शत्रु, तुम जिसको शत्रु मानते हुए अर्थ है वह जन्म ले चुका माँ हिंसी कृपाण में था और शिक्षा भी दिया माता दुर्गा ने माँ हिंसी कृपाण में था, अब अन्य बच्चों की विचारों की हत्या मत करो, इतनी कड़ा चेतावनी दिया माता दुर्गा ने माँ हिंसी कृपाण में था, अब व्यर्थ बच्चों की हत्या मत करो। माता दुर्गा के इस कठोर वाक्य को सुनकर कंस देवकी वसुदेव ने तुरंत कारागृह से मुक्त कर दिया। उनके हथकड़ी बेड़ी खोल करके कारागार से मुक्त कर दिया। कहने लगा, अहो भगनी अहो भामा मया वाम पत्ता दरिदा, हे बहन देवकी और हे बहन के पति वसुदेव, आप बहुत भाग्यवान हैं क्योंकि उसने आश्चर्य देखा, साक्षात दुर्गा जी आपकी पुत्री बनी है, इसलिए आप महाभाग हैं, महाभाग्यवान। ये दुष्ट का विचार देखे, जब दुर्गा जी जन्म ले रही हैं ली हैं तब उनको महाभगवान कह रहा है, और जब भगवान जन्म लिए हैं या लेने वाले हैं तो उनको भगवान नहीं कह रहा है। असुरों का ही स्वभाव होता है, भगवान से बैर करते हैं और अन्य देवी देवताओं का भजन करते हैं। कौन शाक्त था, शक्ति का उपासक। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं शक्ति की उपासना करने वाले लोग शाक्त कहलाते हैं, और माया से दुर्गा जी से वे भौतिक समृद्धि चाहते हैं, मुक्ति नहीं चाहते हैं। वैष्णव इसके विपरीत होते हैं, वे मुक्ति चाहते हैं, भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, वहाँ भगवान के सेवा के आनंद में जाना चाहते हैं। और शाक्त शक्ति की उपासना इसी भौतिक जगत में रहना चाहते हैं, धन पद आदि प्राप्त करना चाहते। माता दुर्गा ने कह दिया, माँ हिंसि कृपणां वृथा, अन्य किसी बच्चे की हत्या मत करो, तुमको मारने वाला देवकी से नहीं हमने कहीं जन्म ले लिया। और केवल इसी जन्म में मारेगा ऐसी बात नहीं है, जो पहले जन्म में भी तुमको मारा था पूर्व शत्रु, माता दुर्गा जी कह रही हैं भगवान तुम्हारे शत्रु हैं। इसका अर्थ यह है कि तुम जिनको शत्रु मानते हो भगवान तो सुहृदम सर्वभूता नहीं है। तुम्हारे जैसे खल को दंड देते हैं कभी कभी अवतार लेकर के, इतनी बात सुनने पर कंस देवी वसुदेव को कारागृह से मुक्त कर दिया, उनकी बेड़ी खोल करके और अपना सौहार्द प्रकट करने लगा। सबसे पहले उसने कहा, अहो भगनी अहो भामा मया वाम मत पाप मना पुरुषा दैवा बहु हिंसता, हे वाम और हे जीजा जी, मैं राक्षस की तरह अपने ही संतान, अपने बहन के पुत्रों की हत्या कर दिया। पहले राक्षस जब जन्म लेते थे तब उन राक्षसों की माता या पिता तुरंत खा जाते थे, जैसे आजकल के मनुष्य खाते हैं। कहीं कहीं हमने सुना है कि नवजात बच्चे को फेर करके पी जाते हैं खून और मांस। तो शुरू में ऐसी बात थी, राक्षस अपने बच्चों को ही मार देते थे। एक बार माता पार्वती ने देखा एक राक्षसी अपने बच्चे को खा रहे हैं, तो यह देख करके माता पार्वती को दया आ गई। उसी समय उसने साथ दिया कि अब वरदान दिया, अब राक्षस जिन्हें जन्म लेंगे वो पूर्ण अंग वाले हो जाएंगे, उनमें पूर्ण बल होगा। तो कोई मार नहीं पाया। आन लोकान में गमिष्यामि, मैं किस लोक में जाऊंगा? ब्रह्मा इव मृतस्तु। हे बहन, हे बहनोई जी, मैं जी रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, परंतु मैं मरा हुआ हूँ। शोषण मिलता है, मैं सांस लेता हुआ भी मैं मरा हूँ, जैसे ब्राह्मण का हत्यारा है, अतिशय दुर्गति में पड़ता है। तो मैं किस लोक में जाऊंगा? नरक में जाने से भी मेरी शुद्धि नहीं होगी। यह केवल देवकी वसुदेव को खुश करने के लिए कह रहा है। माता दुर्गा के वचन से इसको कुछ ज्ञान हो गया है। परंतु देवकी वसुदेव की स्तुति कर रहा है केवल अपनी चिंता है, मैं मर करके नरक में ना जाऊं। सच्चा ज्ञान नहीं हुआ कौन सा? देवकी वसुदेव को प्रसन्न करना चाहता है, जानता है देवकी बहुत महान महिला है, साक्षात दुर्गा देवी जो इसकी पुत्री बनी है। तो माता दुर्गा कभी हमको छोड़ेगी नहीं। अरे, माता दुर्गा के हाथ में ऐसे आयुध थे, अगर एक हाथ से एक आयुध भी चला देते हम पर तो मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं बचा सकता। ऐसी माता दुर्गा अपने माता पिता के फेवर में ही रहेगी, कभी मुझे क्षमा नहीं करेगी। इसलिए देवी वसुदेव को खुश करना चाहता है कि ये खुश रहेंगे हमारे प्राण की रक्षा होगी। लगा मैं बेकार आपके पुत्रों की हत्या कर दी है, परंतु बहन मेरा केवल दोष नहीं है, दोष देवताओं का भी है। दैवम अपनितम भक्ति न मरते है केवलम, मनुष्य ही केवल झूठ नहीं बोलते हैं, देवता भी बोलते हैं। देवताओं की बात को मैं मान करके आपके पुत्रों की हत्या किया। देवताओं ने कहा था कि आठवां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, लेकिन देवता भी झूठ बोलते हैं। आठवां गर्भ तो पुत्री हुई, पर देवताओं ने कहा था कि आठवां गर्भ देवकी का तुम्हारा वध करेगा। ये असुरों का स्वभाव होता है, सदा दूसरे पर दोष लगाना। अतिशय शराब पीने वाला व्यक्ति गीत में सुना था, वो कहता है मैं पीता नहीं हूँ, पिलाया गया। वास्तव में कुछ पाप है मेरा कि मैं देवताओं की बात पर विश्वास किया। देवता तो कहे थे आठवां गर्भ तुम्हारा बंद करे, उसको क्या विश्वास, देवताओं पर विश्वास नहीं। जब देवताओं पर विश्वास होता तो वो देवकी वसुदेव की भक्ति करता पहले से, परंतु अपना दोष दूसरे के सिर मरने के लिए कहा, दैवम अपनितम भक्ति न मर्त्याय केवलम। दैव अर्थात विधाता झूठ बोलता है, केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते। उपनिषद में कहा गया है सत्या देवा अमृतम मनुष्य, देवता सदा सत्य बोलते हैं और मनुष्य कभी कभी सत्य बोलता है, झूठ बोलना है स्वभाव होता है मनुष्य। लेकिन ये वेद वाणी भी बेकार है, तो सब तरह से दूसरे पर दोषारोप करना, वेद को नहीं मानना, ये असुरों का स्वभाव है। फिर भी आप शोक मत कीजिए, दोनों हम तो परम विवेकी हैं, कभी आपने क्रोध नहीं देखा, कभी क्रोध नहीं किए वसुदेव जी और देवकी, कभी क्रोध नहीं किए, हमेशा शांत स्वभाव कर रहे। कोई भी व्यक्ति इस संसार में सदा नहीं रहेगा, और कुछ वर्ष तक रहेगा वो भी साथ में नहीं रहेगा। एक तो सदा नहीं रहेगा व्यक्ति, ये तो भौतिक जगत है और कुछ काल तक रहेगा, अभी तो एक साथ नहीं रहेगा। पुत्र हो चाहे पिता हो या माता हो, बिछोड़ते रहते हैं। सबके कर्म फल अलग अलग हैं, अपने कर्म के अनुसार कोई साथ रहता है और अंत में बिछुड़ जाता है। आज सूर्य है कल शत्रु बन जाता है। सुमधुर मम दौर आत्मा, मेरी दुष्टता को क्षमा कीजिए। और ऐसा कह करके अंत में देवकी के चरणों पर गिर पड़ा, वसुदेव जी के चरणों में गिर गया, पकड़ गया चरण। देवकी वसुदेव को दया आ गई। ये जो भगवान का स्वभाव है वही भक्त का भी होता है। कोई कितनी भी दुष्टता करे, अगर भक्त से क्षमा मांग ले, चरण पकड़ ले और विशेष करके रोने लगे, उसके आंखों में आंसू भर जाए, वाणी गदगद हो जाए, तो भक्त क्षमा कर देता है। तो कंस जो भुजवंश का राजा था, देवकी वसुदेव जी के चरणों में गिर गया, उसके आंखों में आंसू भरा हुआ। यह देख करके वसुदेव जी उसको सांत्वना दिए, कहने लगा कि हंस करके बोले, ये आपने जो कुछ किया होने वाला था, कोई बात नहीं, आप अपने घर जाइए, भोर हो गया, रात्रि का शेष भाग, आप जाइए स्नान कीजिए, और मंगला आरती आदि करना होगा वो कीजिए। देवकी जी ने भी कहा ठीक है भैया। वो रो रहा था, आंसू बहा रहा था, इसलिए दया आ गई देवकी जी, और उसने दोनों प्रसन्न हो गए। भक्त का स्वभाव है, किसी भी स्थिति में वो बदला नहीं लेना चाहिए। निर्वैरा सर्वभूतेषु असमामेति पांडव, भगवान कहते हैं हे पांडव, हे अर्जुन, जो निर्वैर है सभी जीवों के प्रति, वह माम एति मुझे प्राप्त करता है। यह है साधु का स्वभाव। ये तो वसुदेव तो साधु शिरोमणि है, भगवान के पिता है। ये प्रसन्न थे और अंत में कह दिए कि आप जाइए अपने घर, कंस अनुमति दे इनसे और अपने भवन में, अपने आवास स्थान पर चला गया। कंस जो भी तत्व ज्ञान की कथा कहा, वह केवल अपने प्राण की रक्षा के लिए, वह डर गया था माता देव माता दुर्गा से, सूत लोग ऐसा तत्व ज्ञान की कथा कहते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं, अरे इस संसार में क्या है, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, दूसरों को उपदेश करना होगा तो कहेंगे ये ब्रह्म सत्य है, ये संसार मिथ्या है। देवकी को पुत्र, देवकी के पुत्रों को मारते समय उसमें ये सब तत्व ज्ञान नहीं रहा और अभी भी नहीं है। अभी भी अपने शरीर की रक्षा चाहता है, इसलिए देवकी वस्ते कुशामत कर रहा है, दिखा रहा है कि हमारा संबंध है आपसे। ठीक है, यही हम समाप्त करते हैं। जय श्री राम।